नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नॉट थ्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, जूलियट बी। शो की द ओवरस्पेंट अमेरिकन, व्हाई वी वांट व्हाट वी डोंट नीड, अमेरिकी उपभोक्ता संस्कृति का सामाजिक और आर्थिक विश्लेषण है। मूलतः 1998 में प्रकाशित यह पुस्तक उस विरोधाभास को समझती है जिसमें आय और सुविधाएं बढ़ने पर भी अनेक परिवार बचत की कमी, कर्ज और समय के दबाव से जूझते हैं। शोर का तर्क केवल यह नहीं है कि लोग व्यक्तिगत अनुशासन की कमी से अधिक खरीदते हैं, वे दिखाती हैं कि तुलना के बदलते मानक, महंगे जीवन की दृश्य छवियां, विज्ञापन और ऋण की सहज उपलब्धता खर्च को सामान्य और आवश्यक जैसा बना देते हैं। पुस्तक का केंद्रीय प्रश्न है कि जिन वस्तुओं को कभी विलासिता माना जाता था, वे धीरे धीरे सामान्य जीवन के अपेक्षित हिस्से कैसे बन जाती हैं। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और सांस्कृतिक आलोचना को जोड़कर शोर उपभोग को पहचान, प्रतिष्ठा, काम और पारिवारिक जीवन के संबंध में रखती है। इसका उद्देश्य पाठक को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि उस व्यवस्था को दिखाई देने योग्य बनाना है जो चाहतों को लगातार फैलाती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, संदर्भ समूह बदलने से सामान्य जीवन का मानक महंगा बनता है। शोर के विश्लेषण का प्रमुख विचार यह है कि खर्च अक्सर केवल जरूरत या वास्तविक आय से तय नहीं होता। लोग अपने जीवन का आकलन उन लोगों के मुकाबले में करते हैं जिन्हें वे अपने आसपास, मीडिया में, कार्यस्थल पर या लोकप्रिय संस्कृति में देखते हैं। जब तुलना का दायरा निकट पड़ोस और समान आय वाले लोगों से हटकर अधिक संपन्न जीवन शैली तक पहुंचता है, तो अपेक्षाएं ऊपर उठती हैं। बेहतर घर, अधिक सुविधाओं वाली कार, ब्रांडेड कपड़े, यात्रा और बच्चों के लिए महंगी गतिविधियां, धीरे धीरे सफलता के संकेत और फिर सामान्य मानक लगने लगते हैं। शोर इस प्रक्रिया को अपस्केलिंग के रूप में रखती हैं। इसका अर्थ केवल महंगी चीज खरीदना नहीं, बल्कि जीवन के अनेक क्षेत्रों में गुणवत्ता की अपेक्षित सीमा का ऊपर खिसकना है। समस्या यह है कि इस नई सीमा को पाने के लिए आय हमेशा उतनी नहीं बढ़ती। तब परिवार अधिक घंटे काम कर सकते हैं, बचत घटा सकते हैं या कर्ज ले सकते हैं। इस दृष्टि से द ओवरस्पेंट अमेरिकन व्यक्तिगत खर्च की सलाह वाली पुस्तक से अलग है। यह पूछती है कि व्यक्ति को अपनी इच्छा पूरी तरह निजी क्यों लगती है, जबकि उसकी परिभाषा सामाजिक तुलना से बन रही होती है। पाठक के लिए उपयोगी प्रश्न यह है कि किसी खर्च के पीछे वास्तविक उपयोगिता है या बदले हुए तुलना मानक का दबाव। दूसरा, विज्ञापन और मीडिया चाहत को पहचान तथा खुशी से जोड़ते हैं। पुस्तक में मीडिया को केवल उत्पादों की सूचना देने वाला माध्यम नहीं माना गया है। शोर के अनुसार विज्ञापन और व्यावसायिक संस्कृति उपभोग को आकर्षण, आत्मसम्मान, परिवार की सफलता और व्यक्तिगत पहचान के साथ जोड़ती है। संदेश प्रायः सीधा आदेश नहीं होता कि कोई वस्तु खरीदे। इसके बजाय वह एक ऐसी जीवन शैली दिखाता है जिसमें वस्तु के माध्यम से अपनापन, नियंत्रण, सुंदरता या उपलब्धि प्राप्त होती दिखाई देती है। इस तरह खरीदारी एक व्यावहारिक निर्णय से अधिक स्वयं को गढ़ने की गतिविधि बन सकती है। मीडिया के जरिए संपन्न जीवन के दृश्य लगातार उपलब्ध रहने से दर्शक उन मानकों को अपने वास्तविक सामाजिक परिवेश से अलग होते हुए भी निकट अनुभव कर सकता है। शोर की आलोचना यह नहीं कि हर विज्ञापन व्यक्ति को निष्क्रिय बना देता है। उनका व्यापक बिंदु यह है कि व्यावसायिक संचार लगातार उन सांस्कृतिक संकेतों को मजबूत करता है जिनसे महंगे विकल्पों को सामान्य, वांछनीय और अर्जित करने योग्य माना जाता है। इस प्रक्रिया में संतोष टिकाऊ नहीं रहता, क्योंकि बाजार नई शैलियां, नए उन्नयन और नए अंतर पैदा करता रहता है। इसलिए पुस्तक मीडिया साक्षरता की जरूरत रेखांकित करती है। किसी भी खरीद से पहले यह देखना जरूरी है कि वस्तु किस काम आएगी और उसके साथ बेची जा रही प्रतिष्ठा या खुशी की कहानी कितनी विश्वसनीय है। तीसरा, बढ़ता उपभोग बचत, कर्ज और काम के समय पर संयुक्त दबाव डालता है। शोर उपभोक्तावाद की आलोचना को नैतिक संयम की भाषा तक सीमित नहीं रखती, वे उसके आर्थिक परिणामों को परिवारों की बचत, ऋण और श्रम के समय से जोड़ती हैं। जब ऊंचे उपभोग मानक सामान्य प्रतीत होने लगते हैं, तब खर्च बढ़ने पर भी जीवन में अधिक सुरक्षा या संतोष जरूरी नहीं बढ़ता। आय और अपेक्षित जीवन शैली के बीच अंतर को भरने के लिए परिवार बचत कम कर सकते हैं या क्रेडिट पर निर्भर हो सकते हैं। साथ ही महंगे जीवन को बनाए रखने के लिए अधिक आय की जरूरत काम के लंबे घंटों का दबाव बढ़ा सकती है। यह संबंध शोर की पहले की कार्य और अवकाश संबंधी चिंताओं से भी मेल खाता है, हालांकि यह पुस्तक मुख्यतः खर्च पर केंद्रित है। अधिक काम से समय की कमी पैदा होती है और समय की कमी कभी कभी सुविधा खरीदने, तैयार सेवाओं पर निर्भर होने या सोच समझकर विकल्प चुनने की क्षमता घटने से खर्च को और बढ़ा सकती है। इसीलिए समस्या एक चक्र का रूप ले सकती है। अधिक उपभोग के लिए अधिक आय चाहिए, अधिक आय के लिए अधिक काम और अधिक काम के कारण जीवन को संभालने के लिए फिर बाजार आधारित समाधान। पुस्तक पाठक को मासिक बजट के साथ समय बजट देखने का आग्रह करती है। किसी वस्तु की कीमत केवल उसका भुगतान नहीं, उसे जुटाने के लिए लगाया गया श्रम और उससे छूटा पारिवारिक या सामुदायिक समय भी है। चौथा, नई वस्तुएं ही नहीं, पुरानी चीजों का लगातार उन्नयन भी खर्च बढ़ाता है। द ओवरस्पेंट अमेरिकन का एक उपयोगी योगदान यह है कि शोर खर्च की समस्या को केवल अनियंत्रित खरीदारी या नई वस्तुओं की संख्या से नहीं समझती। वे बताती हैं कि उपभोक्ता मानक पुरानी श्रेणियों के भीतर भी ऊपर चढ़ते हैं। घर, वाहन, घरेलू उपकरण, संचार साधन और छुट्टियां, सभी में पहले पर्याप्त मानी जाने वाली चीज धीरे धीरे अपर्याप्त दिखाई देने लगती है। बाजार नए विकल्प देता है, लेकिन सांस्कृतिक अपेक्षाएं उन्हें वैकल्पिक बने रहने नहीं देती। बेहतर सुविधाएं, अधिक अनुकूलन और अधिक महंगे संस्करण सामान्य प्रगति के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। परिणाम यह होता है कि प्रतिस्थापन का निर्णय वस्तु के खराब होने पर नहीं, बल्कि उसके पुराने दिखने या नए मानक से नीचे लगने पर होने लगता है। शोर के लिए यह रैचेटिंग प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जरूरतों की सूची स्थिर नहीं रहती। आय बढ़ने का लाभ बचत, अवकाश या सुरक्षा की ओर जाने के बजाय उन्नत मानकों को पूरा करने में लग सकता है। यह विश्लेषण आज भी उपयोगी है, भले ही पुस्तक अपने समय की उपभोक्ता वस्तुओं और मीडिया परिवेश पर लिखी गई थी। व्यावहारिक स्तर पर यह विचार वस्तु की उपयोग अवधि, मरम्मत की संभावना और वास्तविक कार्यक्षमता पर ध्यान देने को प्रेरित करता है। प्रश्न यह नहीं कि नया संस्करण बेहतर है या नहीं, प्रश्न यह है कि क्या उसका अंतर इतना मूल्यवान है कि उसके लिए अतिरिक्त धन, श्रम और पर्यावरणीय संसाधन लगाए जाएं। अंत में, डाउनशिफ्टिंग उपभोग घटाने के साथ मूल्यों और जीवन शैली का पुनर्मूल्यांकन है। शोर पुस्तक में डाउनशिफ्टिंग को केवल सस्ता खरीदने या कठोर त्याग के रूप में प्रस्तुत नहीं करती। इसका व्यापक अर्थ है जीवन की गति और खर्च को उन मूल्यों के करीब लाना जिन्हें व्यक्ति वास्तव में महत्वपूर्ण मानता है। कुछ लोगों के लिए इसका संबंध बच्चों, परिवार, समुदाय, व्यक्तिगत विकास या अधिक सार्थक काम के लिए समय निकालने से हो सकता है। दूसरों के लिए यह कर्ज घटाने, कम संसाधन वाली जीवन शैली अपनाने या प्रतिष्ठा आधारित तुलना से दूरी बनाने का प्रयास हो सकता है। इस विचार की शक्ति यह है कि यह उपभोक्तावाद की आलोचना को सकारात्मक कसौटी देता है। लक्ष्य केवल कम वस्तुएं रखना नहीं, बल्कि यह तय करना है कि पर्याप्तता कैसी दिखती है और किस प्रकार का जीवन संतोष देता है। फिर भी शोर का ढांचा यह भी संकेत देता है कि व्यक्तिगत बदलाव आसान नहीं है। जब समाज में महंगे मानक, विज्ञापन और असमान आय के प्रदर्शन व्यापक हो, तब अलग विकल्प चुनने पर सामाजिक दबाव बना रहता है। इसलिए डाउनशिफ्टिंग को निजी निर्णय के साथ सांस्कृतिक और संस्थागत प्रश्न भी समझना चाहिए। परिवारों को समय, सुरक्षित आवास, शिक्षा और सामाजिक सम्मान जैसी वास्तविक जरूरतें होती हैं, जिनका समाधान केवल खरीद कम करने से नहीं होता। पुस्तक का संतुलित पाठ यह है कि खर्च की समीक्षा करें, पर संरचनात्मक दबावों को भी पहचानें, अपनी प्राथमिकताओं, तुलना के स्रोतों और समय के उपयोग को स्पष्ट करना अधिक टिकाऊ निर्णयों की शुरुआत हो सकती है। निष्कर्ष में, द ओवरस्पेंट अमेरिकन उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो कर्ज, बचत की कमी, लंबे काम के घंटे या लगातार बढ़ती जीवन शैली की अपेक्षाओं को केवल निजी असफलता मानने के बजाय उनके सामाजिक कारण समझना चाहते हैं। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मीडिया अध्ययन, टिकाऊ जीवन शैली और पारिवारिक समय में रुचि रखने वाले पाठकों को इसमें एक साझा विश्लेषणात्मक ढांचा मिलेगा। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि यह खरीदारी के निर्णयों के पीछे छिपे तुलना मानक को पहचानने में मदद करती है। पाठक अपने खर्च को केवल आय और कीमत के आधार पर नहीं, बल्कि समय, कर्ज, उपयोगिता और प्रतिष्ठा की इच्छा के आधार पर भी परख सकता है। बौद्धिक रूप से इसकी खासियत यह है कि यह उपभोक्तावाद को व्यक्तिगत लालच की सरल कहानी नहीं बनाती। शोर दिखाती है कि मीडिया, दृश्य संपन्नता, बदलती सामाजिक तुलना और बाजार के उन्नयन चाहत को व्यवस्थित ढंग से आकार देते हैं। इसी कारण यह पुस्तक सामान्य व्यक्तिगत वित्त पुस्तकों से अलग खड़ी होती है, जो अक्सर बजट और आत्मनियंत्रण पर ही रुक जाती हैं। यह उन साधनों को भी नहीं भूलती जिनसे व्यक्ति अपनी जीवन शैली को मूल्यों के अनुरूप ढाल सकता है, जैसे पर्याप्तता की अपनी परिभाषा बनाना और समय को संसाधन मानना। यद्यपि इसका मूल संदर्भ 1990 के दशक का अमेरिका है, इसकी केंद्रीय अंतर्दृष्टि आज के डिजिटल प्रदर्शन और तेज उपभोक्ता चक्रों को समझने में भी प्रासंगिक बनी रहती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जूलियट बी शोर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।